Similar statements are made in the Srimad Bhagavatam.
ऐसे कुछ वाक्य श्रीमद् भागवतम में भी कहे गए हैं.
There are two classes.
इसमें दो श्रेणियां हैं.
In human society.
मनुष्य समाज में.
That is called the pilgrimage of the crows.
जो कहते हैं कि कौओं का तीर्थ.
And the pilgrimage of the swans.
और जो कोयले हैं उनका तीर्थ, हंसों का तीर्थ.
In this shloka, the devotees are compared to cuckoo, like cuckoo is a type of bird.
यहाँ पर भक्तों की तुलना कोयलों से की गई, कोयल से की गई.
Cuckoos are famous for sweet singing.
और कोयल बड़ी मशहूर होती है उनकी मधुर वाणी
के लिए. I don't know if you have any here in Delhi. I don't know.
शायद पता नहीं आप लोगों ने कभी कोयल को सुना है दिल्ली शहर में.
Nowadays we see because of the advancement of Kali Yuga.
हम देखते हैं जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है.
The dominant bird in the cities is crow.
और जो अधिकांशता यहाँ पर चिड़िया हमें दिखाई देती है वो कौआ है.
So we have first-hand experience.
और हमें मतलब पहला साक्षात्कार कौए का.
Right down the street is the filthy, stinking, you know, garbage dump.
और आगे इसी सड़क में आगे जाएंगे तो कूड़े का ढेर है.
So what kind of bird you find there?
और वहाँ पर आपको कौन सा चिड़िया दिखाई देती है, पक्षी दिखाई
देता है? Mostly crows. The crows dominate. Some other birds may come.
अधिकांशतः हमें वहाँ पर कौए दिखाई देते हैं.
Generally, crows are into dominating.
और कौओं का स्वभाव होता है कि वो
very
जमाने वाले होते हैं.
Very large, strong bird, you know. So if a smaller bird comes along, the crow can easily chase it away.
तो वो बड़े शक्तिशाली पक्षी होते हैं तो कोई दूसरी चिड़िया आती है तो उसको वहां से भगा देते हैं.
Their taste is for filthy things.
और उनका स्वाद जो है वो गंदी चीजों में होता है.
Where's your notebook? Never come to class without a notebook. Where's your notebook? Your excuse is it's a rainy day. Is that your excuse? Always come to class with a notebook. You can put it in a poly bag on a rainy day, you know. He knows English. What's his lame excuse?
He's saying, Maharaj, that his clothes are wet, so bag is somewhere.
Well, you have to put your notebook on poly bag or shastra or anything like that. You know, they can't get wet. On a rainy day, you put it in poly bag. So in this kind of weather, you should keep poly bags with you.
तो इस मौसम में क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसा ना हो कि आप किताब लेके क्लास में ना बैठे. तो आज कह रहे हैं कि आप थैली में किताब रसदन रखे हो गीली ना, लेकिन किताब लेके जरूर बैठे.
This is monsoon season. So in monsoon season, you can expect it's going to rain.
तो स्वाभाविक है कि अभी वर्षा ऋतु है तो यहाँ पर वर्षा तो होगी ही.
Paying attention? Are you paying attention? You?
पंकज हो? आपके पास कॉपी है?
What did I say? What did I say? Oh, you've got your notebook. He has his notebook after all.
तो महाराज ये विनती करें सब भक्तों से कि अपने साथ कॉपी जरूर रखें क्लास में.
Just being lazy, you see. If you want to advance in Krishna consciousness, you cannot be lazy.
तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आलसी नहीं हो सकते.
And these are the seeds. Not having a notebook and not keeping your notes are the seeds of a wrong attitude. I have to tell you, look, I have a right to say that. I certainly have a right to say that.
तो जो है वो अगर हम लोग ये दिखाते हैं कि अगर हम कॉपी नहीं लेके आते तो ये हमारे आलस के बीज हैं जो ये दिखाई देते हैं. और मेरा अधिकार है कि मैं आप लोगों को इस चीज में करेक्ट करूं ताकि आप कॉपी जरूर लेके आए और नोट्स बनाए जो महाराज कह
रहे हैं. What works and what does not work in Krishna consciousness. I have a right to teach that because I'm successful by the mercy of Prabhupada.
तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत में 48 years से ऊपर हो गए हैं तो इसलिए मैं और प्रभुपाद जी के पास से मैं भक्ति अभी भी कर रहा हूँ तो इसलिए आप सबका वरिष्ठ होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपको बता सकूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
So if you're too lazy to pull your notebook out of your backpacks.
अगर आप इतने आलसी हैं कि अपने बैग में से अपनी आप कॉपी भी नहीं निकाल सकते,
दिस इज कॉल्ड तमोगुण,
तो उसको तमोगुण कहते हैं.
If your foundation for Krishna consciousness is tamogun, how you can advance? How?
अगर आपकी भक्ति का आधार तमोगुण है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
Can you advance?
क्या आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं.
Because what you're missing that I'm not missing is that these are the seeds of what's called a know-it-all attitude. Write it down. A seemingly insignificant thing like this. It's the seeds of a know-it-all attitude. Know-it-all. I already know this. That's okay, fine. I know this. Yeah, I've got it down. I've got Krishna consciousness down. No problem.
तो ये लक्षण दिखाता है कि मुझे सब कुछ पता है. तो फिर ऐसे व्यक्ति के जो है उसको कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लगती. ये इसके लक्षण दिखाता है, तो ये ठीक नहीं है. ये
practically every class you will hear something you never heard before. Or if you did hear it, you don't remember it. That's my guarantee that I'm making in front of deities.
तो मैं भगवान के सामने ये चुनौती से कह सकता हूँ कि हम कोई भी कक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें नई बातें सीखने को मिलती हैं. अगर हमने कोई बात सुनी भी हो तो हमें उसमें भी एक नई शिक्षा प्राप्त हो सकती है. तो बिना कॉपी के हमें नहीं बैठना चाहिए.
Now you're a little senior even though you're a yellow boy. You, how many years long time? 8 years or something? 12 years.
No, 5 years. 5 years.
5 years. Okay. 5 years. Beware. Beware of getting puffed up with pride of thinking I'm already senior to these other yellow boys. Beware. That will be your downfall.
तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप झूठे अहंकार से फूल ना जाएं कि मुझे 5 साल हो गए भक्ति में या कुछ साल बीत गए हैं भक्ति में और मैं बाकी भक्तों से वरिष्ठ हूँ. ऐसे अहंकार की भावना आपके हृदय में कभी ना आए तो आप हमेशा ऐसे सतर्क रहना चाहिए.
You already knew everything about the pilgrimage of the crows and pilgrimage of swans. You did not know. Now you should feel very foolish that you didn't have your notebook out of your bag. And ready to write, because I will tell you things, and all other devotees, senior devotees, will tell you things that you don't know. Otherwise, what is the point?
So, prarthana hai sab bhaktan se ki hum varishth bhakt jo hai aapko nayi cheeze batayenge. Jaise maine abhi bataya ki kavon ka teerth aur hanson ka teerth, isme kya antar hota hai? Shastra ke vakya hain. To aap sab jo hai isko dhyanpurvak sunen aur isko likhen.
First, we're beginning with the conception of the pilgrimage of the crows. But that's the emphasis here, made by Ramananda Roy. It's the emphasis made by Srila Prabhupada. First, let's focus on what does this mean, anyways.
तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि कौओं को तीर्थ का क्या मतलब है, जो हम यहाँ पर भागवतम में भी सुनते हैं और प्रभुपाद जी भी हमें समझाते हैं.
So this Prabhu over here, you. Yes, you weren't going to write anything down. So that means you know everything about it, right? No.
तो महाराज पूछ रहे हैं कि आप कॉपी नहीं निकाल रहे थे तो शायद आपको इस सिद्धांत के बारे में पता होगा, क्या तो आप बता सकते हैं इसके बारे में?
So Bhagavad says, I don't say, Bhagavad says, filthy, disgusting subject matters are the pilgrimage of the crows. I don't say, Bhagavad says.
So भागवतम कहता है कि जो व्यर्थ की बातें हैं, जो कृष्ण से रहित हैं, ऐसी बातें जो हैं वो कचरे के समान है जहां पर कौवे रहते हैं, निवास करते हैं, वहां विचरण करते हैं.
So Prabhu, since you already have an idea what this is all about, because you didn't have your notebook ready, so you know.
So महाराज पूछ रहे हैं कि शायद आप कॉपी नहीं निकाल पाए तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा.
What does pilgrimage mean in this context? What does it mean?
तो पंकज कुमार महाराज पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि कौओं का तीर्थ, पिलग्रिमेज तीर्थ, तो महाराज पूछ रहे हैं तीर्थ क्यों कहा गया है? कौओं का तीर्थ जो कचड़े का स्थान होता है उनका,
ऐसी बातें
जो कृष्ण से रहे थे, तो
व्हाट इज भगवान से पिलग्रिमेज, व्हाई?
महाराज जी पूछ रहे हैं, आप प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनो, आप आंसर दे सकते हो, आप ध्यानपूर्वक सुनो.
No answer.
महाराज पूछ रहे हैं कि ये कौओं का तीर्थ कहा गया है जो चीजें कृष्ण से रहित चीजें होती हैं वो बकवास के समान है, व्यर्थ के समान है, कचड़े के समान है, जहाँ कौवे रहते हैं, तो उसको तीर्थ क्यों बोला गया? ऐसा कौओं का तीर्थ क्यों कहा गया?
Alright, you five-year devotee, you're supposed to know the answer to this question. Why Bhagavad says pilgrimage? Yes, people of a filthy mentality. Very good. So you did learn something in the past 5 years. Hariba. So-called human beings who have got a filthy mentality, what kind of books they're reading?
So, जो तथाकथित जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो भौतिक किताबें पढ़ते हैं. नॉवल पढ़ते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, जिसमें अधिकांशता भौतिक चीजों के बारे में वर्णन किया जाता है.
रबिश नॉवल्स, चीप नॉवल्स, चीप पेपरबैक नॉवल्स.
हम देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें व्यर्थ की और बकवास बातें लिखी होती हैं.
Nowadays, the younger generation is not interested in reading paperback books.
और आजकल तो जो आधुनिक पीढ़ी है वो तो जो आगे से बनी किताबें हैं वो पढ़ने में रुचि नहीं रखती.
Even the brightest students in universities, what is their pilgrimage?
So, जितने भी बुद्धिमान से बुद्धिमान भी हैं अब इस विश्व के आधुनिक विश्वविद्यालयों में, उनका भी क्या तीर्थ स्थान है, वो भी क्या चीज पढ़ना चाहते हैं?
What is your answer, Prabhu? You. What is
आपका क्या उत्तर है?
Brightest boys in university, you know them. What is their pilgrimage?
महाराज पूछ रहे हैं, महाराज पूछ रहे हैं कि जो आधुनिक पीढ़ी है वो क्या पढ़ने में रुचि रखते हैं.
Yes, cinemas, newspapers, magazines, okay, very good. That's okay for starters. That's it.
I'm going to pick the take with that. Hari Bol.
No, just the beginning.
You told me should have that.
Newspapers, magazines, cinema, television, that's just the beginning.
It's just the beginning, whether it's akhbar, whether it's magazine, whether it's television, whether it's radio.
We're talking about the brightest university youth.
जो विश्वविद्यालय में सबसे बुद्धिमान.
Right now, at least in India, we know the fashion, the taste, the prolife taste of the best and brightest university students. What is their taste? Keep going.
तो अगर जो विश्वविद्यालयों में भी आधुनिक विश्वविद्यालयों में जो सबसे बुद्धिमान भी विद्यार्थी हैं, तो उनकी भी रुचि किसमें होती है पढ़ने में?
You. Come on, weren't you listening to the question? Cars, mobile phones? Huh?
Modern gadgets.
Yeah, these are all things that are part of the pilgrimage of pros, that's true.
So, बिल्कुल सही कहा प्रभुजी ने कि ये भी उनका तीर्थ स्थान है. कि वो नए नए गाड़ी के विषय में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मॉडर्न गैजेट्स के बारे में, मोबाइल फोन्स के बारे में.
Of course, there are certain gadgets that we can employ in devotional service that is no longer, contaminated.
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यही हम आधुनिक चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर वो कौओं का तीर्थ के समान नहीं.
This movie camera is being employed for recording Srimad Bhagavatam Katha.
जैसे आप देखते हैं कि सामने जो है ये आधुनिक कैमरा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसके लिए? कि भगवान की कथा को रिकॉर्ड करने के लिए.
And camera could be used for wedding pictures.
So, हम कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की संबंधित पिक्चरों के लिए.
Is that in the category of pilgrimage of crows?
क्या वो कौओं का भी तीर्थ माना जाएगा?
No, it's not. It's sattvic.
हाँ या ना?
Wedding, wedding cinema is the Pilgrimage of the Swans, is that right?
जो शादी के सिनेमा जब शादी में जो खींचे जाते हैं फोटोग्राफ क्या वो भी हंसों के तीर्थ माने जाते हैं?
Older and wiser. That was a trick question.
बड़ा पचीदा प्रश्न महाराज का था.
No, it's not the Pilgrimage of the Swans.
तो वो
Look at how happy the people are after drinking wine and liquor. Excuse me, that's what goes on at weddings nowadays. They all get drunk. Give me a break. You're saying it's not the Pilgrimage of Growth. What are they doing at these weddings? They're eating meat. Certainly they're eating meat. So many meteors.
तो महाराज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी शादी में भी जाएं, हालांकि उसके लिए बड़ा अच्छा दिन हो सकता है लेकिन लोग वहां शराब पीते हैं नशा करते हैं मीट खाते हैं तो हम उनको हंसों का तीर्थ नहीं सह
सकते वो भी
वो मदिरा पान करते हैं
You still think it's not the Pilgrimage of the Crows?
तो जो शादी में लोग मीट खाते हैं शराब पीते हैं उसका जो पिक्चर खींचते हैं जो लोग ऐसे जाते हैं क्या वो हंसों का तीर्थ है क्या या
You became converted? All of a sudden he pretends he doesn't know English and he's on the hot seat.
No, he's saying, Maharaj, no, it is such wedding ceremonies are not pilgrimage for it is pilgrimage of crows, not pilgrimage of swans.
Yes, but he changed his story. You're all witnesses.
So he's
he did 360 degrees on that one. He started off by saying that it was not the Pilgrimage of the Crows because it violates the whole idea of youth, romance, women, love. It's love.
मैं इसकी नकल नहीं उतार सकता.
What? I can't repeat that in Hindi. It's love.
मार्च कह रहा है कि जैसे कोई जिसकी शादी होती है तो उसको तो बड़ा रोमांचकारी होता है उसके लिए एक नया प्रेम उसके जीवन में आता है उसके लिए एक नया रोमांस की बात होती है लेकिन वास्तविक रूप में वो एक कवों का तीर्थ ही है क्योंकि माँ मदिरा पान चलता है मांस भक्षण
चलता है Oh, how terrible! You can't blaspheme love and romance. Oh, blasphemy, blasphemy!
तो
कमाल
तो महाराज बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति तो उस टाइम सातवें आसमान में होता है जब उसकी शादी होने वाली होती है लेकिन वास्तव रूप में तो वो कमों का तीर्थ के समान
है Oh, so even weddings are pilgrimage of the crows. It seems like we all agree now, but before we didn't all agree.
तो हम आप समझ सकते हैं कि ऐसी शादी जहां पर सब नियम तोड़े जाते हैं चाहे वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण दिन हो लेकिन वो भी
I mean, just consider the divorce rate now, you know, these weddings now. Everybody's happy because they're drinking liquor.
तो हम देखते हैं कि आजकल जो है वो डाइवोर्स बड़ी जल्दी हो जाता है और उसके कारण कई देखे जाते हैं कि दोनों ही मदिरा पान करते हैं अवैध संबंध करते हैं
So that liquor drinking gives you a temporary sense of happiness because it dulls out the pain temporarily.
तो जो ऐसा कभी डाइवोर्स का जो दर्द होता है तो व्यक्ति क्या करता है मदिरा पान या नशे में डूब जाता है वो उसको एक क्षणिक सुख देता है या उसे क्षणिक तरीके से उसको भुला देता है
So what is that called?
So उसको क्या कहेंगे?
Temporary pleasure that temporarily dulls out the pain is called what?
तो जो क्षणिक सुख उसको मिलता है, उसको उस दर्द को भुलाने के लिए तो उसको क्या कहते हैं?
Sarvabhya, you look like you know. What is the answer? Anubhava! Chapala sukha.
बिल्कुल सही उत्तर दिया सदा के दामों तक घूमने उसे कहते हैं चप्पल सुख
सो सुख मींस हैप्पीनेस इट मस्ट बी द रूट वर्ड ऑफ द वर्ड शुगर यू नो हैप्पीनेस और स्वीटनेस
तो सुख का मतलब खुशी आनंद मिठासपन
I don't know if Webster's dictionary would give the credit to Sanskrit. I doubt it. They're very kripana, you know. They don't like to give credit to India because Webster's undoubtedly was originally a British publication. So why they would give credit to India and those days. They may have revised, now they keep revising it. They might have started giving some credit to Sanskrit by now. Because they're studying in Cambridge University school children are now studying Sanskrit in UK. Yes.
तो जैसे हम Webster Dictionary देखते हैं, Oxford Cambridge Dictionary देते हैं, तो कई शब्द अंग्रेजी में भी जो है वो संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन वो फिर भी इसका श्रेय संस्कृत भाषा को नहीं देते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में प्रकाशित है. लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे कई स्कूल्स में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में बच्चे जो हैं आज भी संस्कृत सीखना शुरू हो चुका है. कई बगलों कई ऐसे वहाँ के लोग संस्कृत सीख रहे हैं.
You may doubt it, this is true, but I've seen the videos. Somebody showed me off of Facebook or YouTube the videos of the children chanting Sanskrit in UK, and their teacher was a young woman on top of that, you know, teaching them Sanskrit, and they're chanting very beautifully shlokas and everything in UK. That's a big switch from the 1800s of British conception.
So, Maharaj is saying that you can't trust me in my talks. लेकिन मैंने देखा है कि एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक में कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज स्कूल में कई जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा सीख रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे, और उनकी जो अध्यापिका थी वो भी एक महिला थी, ब्रिटिशर थी, वो उनको संस्कृत सिखा रही थी. तो देखा जाए एक बहुत बड़े परिवर्तन है उन जो 18वीं सदी के जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनकी मानसिकता से, जो कि संस्कृत भाषा को बहुत निकृष्ट मानते थे या भारतीय संस्कृति को बहुत निकृष्ट मानते थे. अब यही अंग्रेज जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं.
The divorce, these marriages are breaking within 2 years. Where's the question of anything but Chapalasuka, beyond Chapalasuka? Unless it's Chapalasuka, why marriages are breaking within 2 years? Growing now more and more. Divorce and breakup within 2 years only. This is now, you know, it's almost coming to the point where it's socially acceptable, you know. But it of course, it's hell. This is not civilization. This is not human civilization. They say it's the finest civilization in history of the planet. Rubbish.
तो हम देखते हैं कि आजकल सिर्फ 2 साल ही होते हैं शादी को तो divorce हो जाता है. अगर वास्तविक रूप में ये सुख शाश्वत होता तो डाइवोर्स क्यों होता. हम देखते हैं चपल सुख है, क्षणिक सुख है, इसलिए जो है एक लड़का लड़की बिछड़ जाते हैं या एक दूसरे के संग को त्याग देते हैं. और ऐसी सभ्यता को, ऐसी संस्कृति को आधुनिक मानते हैं, तो हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं.
As recently as 30 years ago, there was no such thing as divorce in India. As recently as 30 years ago. Oh, you young people were in a different body at that time, perhaps in some other universe. So you weren't around, but I don't know, there's not much old timers, maybe, well, you might have been around, but you were a little kid, right? 30 years ago you were a little kid? Yeah. So you wouldn't have paid attention.
So I'm telling you that in India, even 30 years before, there were not such things about divorce. जिसमें जो शादीशुदा पति पत्नी वो अलग हो जाते हैं, 30 साल पहले से सुनने को भी नहीं मिलता था. और ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे तो यहाँ पर कई नौजवान युवक है जो शायद वो किसी दूसरे शरीर में होंगे, कहीं 30 साल के नहीं है, वो किसी दूसरे ब्रह्मांड के, किसी की दूसरी योनि में होंगे. लेकिन जो है जैसे श्याम कृष्ण प्रभु जी हैं, कई वरिष्ठ भक्त हैं, तो वो शायद इतना अनुभव होगा कि ऐसी तो प्रथा कभी थी भी
नहीं.
तो महाराज रविंदर जी महाराज आपको पूछ रहे हैं कि आपका भी ऐसा अनुभव होगा कि महाराज जैसे आपसे पूछ रहे हैं, आपका भी ऐसा अनुभव होगा कि 30-40 साल पहले डाइवोर्स इतने नहीं दिखाई देते जितने आज के युग में दिखाई देते हैं. क्या आपका ऐसा मान्यता है? He is saying, Maharaj, 30-40 years ago, divorce rates were very low.
It was very low and very uncommon.
Yes, but, that's the point. Very low and very uncommon.
But now the situation is extremely bad and people are considering it as a sort of a fashion now. That okay.
Let him translate.
So, my beast man Ravinder Prabhuji hai, wo bhi ye keh rahe hai ki 30-40 saal pehle डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बहुत कम होता था. लेकिन आज के युग में हम देखते हैं ये तो एक फैशन के जैसे हो गया है. कि लोग जो हैं बड़े जल्दी ही डाइवोर्स ले लेते हैं.
So now it is very common. It's almost, it's coming to the point where it is almost socially acceptable.
Yeah, it is socially accepted now. Basically, this is because of lack of fundamental religious teaching to the children.
तो प्रभु जी बता रहे हैं कि महाराज भी इसमें सहमत हैं कि आप ये तो समाज जो है अब ये समाज इसको स्वीकार करने लगा है कि ये बात इसमें कोई अटपटा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल में भी डाइवोर्स हो जाता है. और इसका मूल कारण जो है हम ये देखते हैं कि क्योंकि लोगों को बचपन में जो है जो धार्मिक संस्कार नहीं दिए जा रहे जिसके कारण जो है वो इस अंजाम तक पहुंचते हैं. Religious teachings in childhood.
Lack of religious principles. But the people of India are very proud of talking about Dharma. They're very proud of the conception of Dharma. They know that India is the motherland of all civilizations in the world. Indians used to know. I mean, your generation, they probably don't even know that, you see. The older generation, your generation, they knew. See, how much education deteriorated in India, because they used to know that India was the motherland of all civilization on the planet. They used to know.
तो महाराज कह रहे हैं कि इसका मूल कारण क्या है क्योंकि जो धार्मिक सिद्धांतों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता. हालांकि भारतीय बड़ा गर्व करते हैं कि ये धर्म का देश है, धर्म भूमि है और पूरी जितनी भी दुनिया में संस्कृतियां हैं वो भारत से जन्मी हैं. लेकिन ये पिछले वर्ग के लोग जो है इससे सहमत है लेकिन आधुनिक जो पीढ़ी है वो इसको भी नहीं मानती है कि वास्तव रूप में भारत ही सभी धर्म सभी संस्कृतियों का उद्गम स्थान था.
And now you young people, you all have a witness in this gentleman. How old are you, sir? How many years old you are?
Maharaj, I'm 78 years old now.
78? Are you pretty well preserved for 78? Very good. Hari Baba.
Hari Baba.
तो बाबू जी बता रहे हैं 78 साल मेरी उम्र हो गई है.
You see, because you're religious, therefore you're doing better than the average person. Better.
तो महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि आप निश्चित रूप से धार्मिक रहे होंगे और हम देख भी सकते हैं प्रभु जी जो है भक्ति का पालन करते हैं इस उम्र में भी. निश्चित रूप से इससे जो है आज वो बाकी लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त स्वस्थ और अच्छे सेहत में है और अच्छे विचारों सोच विचार में.
Bhagavad says in the age of Kali the maximum duration of life is 100 years.
भागवतम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि कलयुग में जिस ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति की उम्र होगी वो 100 साल होगी.
But anyone in the cities cannot live 100 years anymore. It's too contaminated.
और लेकिन लेकिन आधुनिक शहरों में 100 साल जीना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ हर चीज दूषित है.
For you it doesn't matter. There's no point in living to 100 years. For you, because you're a Vaishnava, it doesn't matter. See, you don't have to live the 100 years. You already know the purpose of life. You already, at age 78, you already know the purpose of life. You don't have to live 100 years to get the purpose of life. You already know by the mercy of Srila Prabhupada and the devotees.
So, Maharaj is telling us, Prabhuji is telling us, that Prabhupada and other Vaishnavas, from the चाहे क्योंकि आप एक वैष्णव हैं अगर आप 100 साल नहीं भी जीते तब भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप जीवन का लक्ष्य पता है और आप उसमें अग्रसर हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी और उम्र कितनी होती
है. There is a story. Don't live, don't die. Was it Narada Muni? Who was asking the question? He was traveling and asking different people. Might have been Narada. Different people asking them, you know, I forget exactly how it goes, but it's a classic narration. When he interviewed a butcher, they all wanted to know how long am I going to live or what is my situation.
तो शास्त्रों में बहुत सुंदर कहानी आती है. माँ कहते हैं शायद नारद मुनि इस चीज को कहते हैं लेकिन शास्त्रों में बहुत सुंदर कहानी आती है जिसको शिक्षा प्रद है जिसमें एक संत जा रहे होते हैं तो एक बुचर या फिर एक कसाई उनसे मिलते हैं पूछते हैं कि मैं कितने साल और जीऊंगा.
He told the butcher, don't live, don't die.
तो कसाई को बोलते हैं ना तुम जियो ना तुम मरो.
If he lives, his life is hell. and he's creating such severe sinful reaction. So the longer he lives, the more sinful reaction. This is already hell. He's already living in hell, surrounded by blood and dead bodies of animals. He's already in hell.
तो वो संत कहते हैं उनको उस कसाई को कि तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है क्योंकि तुम जीत अगर और जियोगे तो ज्यादा पाप एकत्रित करोगे और तुम और जो तुम्हारा जीना भी है वो नर के समान है क्योंकि तुम जिस स्थान पे रहते हो खून है मृत शरीर है तुम्हारा जीना और मरना एक ही समान है तुम मरोगे तो नरक जाओगे और तुम जियोगे तो जो जीना भी तुम्हारा नरके के समान है नरक के ही समान है
Don't live because the longer the butcher lives, the more sinful reaction is going to accumulate. So don't live.
तो वो कहते हैं कि तुम जियो मत क्योंकि जितना तुम और जियोगे उतने तुम और जानवरों को काटोगे और पाप करोगे और पाप इकट्ठे करोगे.
And don't die.
और तुम मरो मरना भी नहीं.
Because as soon as you die, you'll be dragged with great force by the Yamadutas.
और जब तुम मर जाओगे तो यमदूत जो है बड़े वेग पूर्वक तुम्हें खींच के ले जाएंगे.
Such. Sinful persons, according to Bhagavatam 5th canto.
और भागवतम पांचवें संग के हिसाब से ऐसे पापी जीवों को नर्क लोक में लेके जाया जाता है।
They have to be dragged across red hot burning copper, you know.
और ऐसे पापी जीवों को भागवतम में वर्णन है, उनको खींच के ले जाया जाता है, उनको चलाया जाता है कि जो कॉपर को क्या कहते हैं?
Just on the way.
जो गरम गरम तांबा जब वो लाल हो जाता है ऐसे तांबे में उस व्यक्ति को घसीट के ले जाया जाता है नरक लोक की तरफ
Just on the way to the court of Yamaraj. I've even got to the court of Yamaraj. That's just on the way. Correct?
वो तो अभी तक हम वो यमलोक तो पहुंचे ही नहीं अभी तो रास्ता बताया जा रहा है जो तपते हुए तांबा से उसको निकाला जाता है तो रास्ता है यमलोक तक उसके बाद कहानी दूसरी है
You read the fifth canto? It's red hot copper highway.
Yes,
yes. Red hot copper highway. So you're being tortured. You haven't even got to the court of Yamaraj yet. Already you're being tortured as you're being dragged. The Yamadutas are ineffective.
तो यमदूत जो हैं ऐसे पापी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए जो हैं वो ऐसे गरम गरम तांबे के रास्ते से लेके जाते
हैं. Write it down. You didn't know this. Did you know this? Did you know it? You knew it. Good. Did you know it? Huh? You knew it? Red hot highway, red hot burning copper on the way to the court of Yamaraj. You already knew that?
So he says Maharaj has read something like this. He has read.
You read fifth canto Bhagavatam already? Or you heard some quotes?
You heard from senior devotees.
Yes, that's it. You heard from other devotees. And by the time you're 50 years old, you'll reach Srimad Bhagavatam. You'll reach Srimad Bhagavatam by the time you're 50 years old.
So, तो आपने आप भागवतम पांचवें स्कंद पे पहुंच गए हैं नहीं?
No.
नहीं आप माजी सिंह
I'm being sarcastic because the devotees are not reading Srimad Bhagavatam. That's why.
Sir, मैंने आपसे गलत बोला. महाराज कह रहे हैं कि महाराज एक सार्काज्म ले रहे हैं, उल्टे ढंग से बोल रहे हैं. क्या आप 50 साल तक भागवतम पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे?
Different places around the world, devotees are not reading.
और इसलिए कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया भर में जाता हूं और भक्त लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं.
That's why I'm asking the question.
इसलिए महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं.
Anyways, this is all part of the pilgrimage. Of the crows, but that answer, this red hot highway and all that, that's from the pilgrimage of swans because that is Bhagavad Katha. Although it's describing something ghastly, but it's Bhagavad Katha. The red hot highway, red hot copper highway being dragged, that's from 5th canto Bhagavatam. So that's not the pilgrimage of crows, even though it's ghastly, it's not the pilgrimage of crows, that is the pilgrimage of swans. Otherwise, why are we reading Bhagavad?
समाज कहने जो वर्णन आता है ये पांचवें स्कंद भागवतम में आता है और ये जो वर्णन है ये कौओं के तीर्थ नहीं है ये भागवत में वर्णन है और भागवत जो है वो हंसों का तीर्थ है जिसमें नारके लोगों का वर्णन
है And if you find fault in the Vaishnavas, That is also the pilgrimage of the cross. Write it down.
और इसको भी आप लिखिए कि अगर आप वैष्णवों में दोष देखते हैं तो वो भी गांवों के तीर्थ के समान
There are some senior so-called devotees who are obsessed over finding fault in the Vaishnavas, finding fault in the GBC, finding fault in sainted persons all over ISKCON. Obsession, compulsive is the word.
तो ऐसे कहीं हम कई बार देखते हैं कि जो भक्ति में जो थोड़े वरिष्ठ हैं वो भी जो है वो ऐसे इस्कॉन में बाकी अन्य वैष्णवों में जीबीसी में और आंदोलन में जो है वो देव दोष देखने के आतुर हो जाते हैं या वो उनका एक तरीके से लत लग जाता
है They have heard the word adosha darshana but never grasped the meaning
उन्होंने शायद इस शब्द को सुना होगा अदोष दर्शन लेकिन शायद उस मतलब को नहीं समझते हैं
Do you know the meaning, sir? Adosha darshana? You do know? Who does not find fault? Yes, very good. Especially in the Vaishnavas. That means even, you know, one should not unnecessarily find fault in the non-devotees even, unless there's a very compelling good reason. If they're meat eater, we will find fault, certainly. If they're wine drinker, we will find fault. Otherwise, even amongst the non-devotees, we should try to see good qualities.
Tamaj कहने हैं कि अदोष दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है अदोष दर्शन का मतलब होता है कि हम किसी में भी खोट या जैसे दोष नहीं देखें वैष्णव है खासकर इवन जो अवैष्णव है जो अभक्त है उनमें भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए हाँ कि अगर बहुत ही कोई विशेष कारण है जैसे कोई मदरा पान कर रहा हो या मांस भक्षण कर रहा हो जीव हत्या कर रहा हो तब अलग बात है लेकिन हमें नहीं तो अभक्तों में भी जो साधारण जनता है जो अवैष्णव है उनमें भी दोष नहीं देखना त्रुटि नहीं देखना चाहिए
The next time you go by this garbage dump down the street and those of you living in the other building you have to go by every day so you see the crows there now you should remember just see how this is the pilgrimage of the crows how they're eating filthy dirty disgusting things somebody who thinks they're advanced in Krishna consciousness but is blaspheming the devotees cannot see their good qualities they are no better than a crow it's clearly stated crystal clear
so जो भक्त नई बिल्डिंग में रहते हैं प्रभुपाद भवन में रहते हैं तो हर रोज वो ये दृश्य देख सकते हैं कि कैसे कौवे जो हैं वो एक कचड़े के स्थान पर रहते हैं उनका वो तीर्थ उन्होंने उनको बनाया हुआ है जिससे हम याद कर सकते हैं कि चाहे कोई भी वैष्णवों में दोष देखता है गलती देखता है तो वो भी उसकी मानसिकता भी ऐसे कौवों के समान है जो कचड़े पे रहते हैं वहां विचरण करते हैं
The devotees of the Lord and consider themselves to be advanced in Krishna consciousness are doomed. They're doomed.
Maharaj एक महत्वपूर्ण वाक्य कह रहे हैं कि जो खुद कृष्ण भक्ति में उन्नत अपने आप को समझते हैं लेकिन साथ साथ वैष्णवों में दोष भी देखते हैं उनमें गलतियां निकालते हैं तो निश्चित रूप से उनका पतन होना अनिवार्य है
So we have to be situated on this adosha darshana platform and we should be very conservative about finding fault. Very conservative about finding fault in Vaishnavas. Sometimes mistakes we have to point out but we should be careful.
So Maharaj कह रहे हैं कि हम सबको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इस चीज में दूसरों में कमी निकालने में हाँ कभी कभी जरूरत पड़ती है दूसरों की बेहतरी के लिए लेकिन अधिकांशता इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए
We are supposed to take up as Vaishnavas or aspiring Vaishnavas the pilgrimage of the swans
तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि हम एक वैष्णव बनना चाहते हैं हमारी ये इच्छा है तो हमें हंस का जो तीर्थ है उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए हमें हंस के जैसे बनना चाहिए
You will not find swans in this sewer river over here. Anybody seen any swans over there?
तो जो सामने नाला है वहां पर आपको हंस तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे.
They won't go there.
वो वहां पर नहीं जाएंगे.
But the younger generation, unless they take up Krishna consciousness, they're doomed.
तो जो नई पीढ़ी है जब तक वो ऐसे विचारधारा नहीं स्वीकार करती, कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करती, वो भी निश्चित रूप से उनका पतन होना आवश्यक है.
Because you gave so many examples of what the younger generation of the intelligent class, toppers in the universities, in many cases, toppers.
तुमने चर्चा की आज कि चाहे कोई जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस में, उसमें कोई बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी भी होंगे, लेकिन उनकी क्या मानसिकता है यह हमने आज चर्चा की.
You give example of material things that they're into, but something very important that you missed.
और हमने आप लोगों ने बताए कई सारी चीजें, भौतिक चीजें जिसमें जिनके विचार में वो विचार करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपने अभी तक वर्णन नहीं किया, नहीं बताया.
Toppers who are into pornography.
और ये जितने भी टॉपर होते हैं स्कूल के, ये अश्लीश, जो अश्लीश चीजें हैं पोर्नोग्राफी, ये इस इनके इनके लत इनको लग जाती है.
So now we see that so many top university students, IIT and University of Delhi, and then this is going on all over the world. It's not like India has a patent on it, you know. This is going on all over the world.
तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, चाहे भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो या पूरी दुनिया में जितने बड़े कॉलेजेस विश्वविद्यालय हो, लेकिन वहां पर ऐसे जो चाहे पढ़ाई में विद्यार्थी तेज हो, लेकिन सब अश्लील चीजें देखते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं.
Very lusty young men, they're frustrated because now maybe, you know, maybe they don't have a girlfriend yet, so they're so frustrated, you know. Or even if they have a girlfriend, they might still be looking at pornography. It's so bad. It's the nature of lust. It is the nature of lust. It's so bad. Even if they have a girlfriend already engaged in sex, still they may go on the internet and look at pornography. That is, lust is so devouring.
तो ऐसे जो युवक हैं निश्चित रूप से वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुंठित होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए कोई उनका पार्टनर या गर्लफ्रेंड ना हो अपने काम की पूर्ति करने के लिए, और अगर होती भी है तब भी जो है वो ऐसे अश्लील चीजें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, और जो है क्योंकि काम जो है उसका स्वभाव है कि वो जो है वो हमारा नित्य बैरी है और हमारा हानि पहुंचाने वाला है.
Somebody might say, Maharaj, you're being so negative.
कोई कह सकता है कि महाराज आप बहुत ही निराशावादी हैं.
Let you focus on the beautiful and good things in life.
क्यों ना हम जो अच्छी सुंदर चीजें हैं जीवन के उसके उसके बारे में चर्चा करें.
Some non-devotees might make this criticism.
कोई अभक्त ऐसे आलोचना कर सकते हैं.
Or even some neophyte devotees might say, this Maharaj is too heavy, come on, you know. Talk about something lighter.
कुछ कनिष्ठ भक्त ऐसे कह सकते हैं, ये महाराज तो जो है ऐसी बातें करते हैं, निराशावादी चीजें बोलते हैं.
Yes, but as aspiring Vaishnavas, we're after Krishna's opinion. We're not after our own opinion. We're chasing after Krishna's opinion, God's opinion. We like it.
तो जो वैष्णव बनना चाहते हैं वो समाज की जनता की चिंता नहीं करते, वो जनार्दन की चिंता करते हैं. तो वो भगवान क्या मत रखते हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बदले कि समाज क्या मत रखता है.
Arjuna is inquiring, what is it that makes somebody fall down?
तो अगर हम कभी ये विचार करने कि किस कारणों से किसी का भक्ति से पतन होता है.
And Krishna replies, it is lust only, O Arjuna.
और भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि वो काम है.
The all-devouring sinful enemy of this world. All-devouring. See, same word that I just used. I said devouring, but I didn't make it up. Krishna says, God says. I don't say it. God says. We just try to repeat what God is saying. That's our success.
तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं काम ईर्षा क्रोध ईर्षा रजोगुण समोभवा महाशना महापापा विधि एनम ही बैरिनम, कि जो काम है हमें हमारा जो काम है भगवान की वाणी को दोहराना है, और भगवान ही कह रहे हैं जो काम है वो हमारा नित्य वैरी है और हमें हमारा हानि पहुंचाने वाला।
सो यू हैव चॉइस, वी ऑल हैव चॉइस, जीवा हैज चॉइस,
जीवा के पास हम सबके पास एक विकल्प है, जीवा के जो विकल्प होता है।
यू कैन चूज वॉलंटरली द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रोस और यू कैन चूज द पिलग्रिमेज ऑफ द स्वान्स और एज द चैतन्य चैतन्य सेइंग हियर कुकू बर्ड्स आफ्टर स्वीट थिंग्स।
तो हम सबके पास एक विकल्प है कि क्या हम कौओं के जैसे बनना चाहते हैं और क्या हमारा तीर्थ कौओं का तीर्थ के समान है, या फिर हम हंस बनना चाहते हैं या जैसे यहाँ पर लिखा है कोयल बनना चाहते हैं।
It's up to you. You've got this free will and you can go either way. Even as a devotee, you can go either way because there is no shortage of devotees who started out in the pilgrimage of the swans and ended up going into the garbage dumps like the crows. There's thousands of devotees have done that. Go return to intoxication, return to illicit sex, you know, going back to the pilgrimage of the crows. Thousands of devotees have done like that.
तो हम इस बात का महाराज कह रहे हैं हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई जो भक्ति का अभ्यास कर रहे थे कई ऐसे भक्त जो हैं वो हालांकि हंस जैसा बनना चाहते थे लेकिन कुछ साल बीतने के बाद अगर सावधानी उन्होंने नहीं बरती जिससे वो कौओं के समान हो गए और कचरे में विचरण करने।
The entire material world is basically the pilgrimage of the crows. The entire material world is fundamentally the pilgrimage of the crows.
तो माँ कह रहे हैं इस बात को आप लिखिए कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि पूरा भौतिक संसार ही उन कौओं के तीर्थ के समान है, वो कचरे के डिब्बे के समान।
But somebody might say, well, what about the heavenly planets? That doesn't seem like the pilgrimage of the crows.
तो कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि महाराज तो स्वर्ग लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कचरे के स्थान के से तुलना उनकी उनसे कैसे कर सकते हैं।
Fine. You can qualify to go up there. You live a life in motor goods, stick your hand in a big bag chanting Nama Bharat. You can go heavenly planets.
तो आप वो स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक माला जाप करें बस नाम अपराध करते जाएं तो आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति तो कर ही लेंगे।
Your punishment for chanting Nama Bharat might be to remain in the material world for 14 trillion 300 billion years while your classmates, your other yellow boys, they went back to Godhead, you know, while you remain rotting in the heavenly planets for 13 trillion 300 billion years. That's called free will.
तो महाराज कह रहे कि आपका विकल्प हो सकता है कि आप नाम अपराध करते जाएं और आप सावधानी ना बरते और पूरे ब्रह्मा जी के जीवन काल तक जिसका गिनती जो है 40 ट्रिलियन और कुछ बिलियन साल है तो आप इस भौतिक संसार में सड़ते रहे और ये जो पीली धोती कुर्ता में भक्त हैं इनको आप भगवत धाम जाते हुए देखें। हरि बोल।
For the sake of this recording, I'll say yellow boy means beginners in Krishna consciousness.
और मेरे कहने का उद्देश्य है जो पीली बस्तर में भक्त हैं मतलब मेरा उनसे मतलब मैं इंगित कर रहा हूँ कि जो नए भक्त हैं कृष्ण भवन अमृत में।
Where the color yellow in the ashram, that's what we mean by yellow boys for the sake of the recording.
तो पीले भक्तों पीले लड़कों का मतलब है कि जो अभी कृष्ण भक्ति में भी जुड़े हैं।
So we'll stop there. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरीचाय की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण राम हरि कृपा की जय। जय गोपाल हरि हरि बोल।
हे भक्ति माधुर गोविंद स्वामी महाराज की जय।